नैवान्लक्षयते लोको लोकान् प्रयाततोऽपियाम् यथा सर्वदशं सर्वा आपनामियेष हेतवः नैवान्लक्षते लोको लोकान् प्रयाततोऽपियाम् यथा सर्वदशं सर्वा आत्मनाम्येष हेतवः Mataji is शब्दार्थ
न नहीं एवा इस प्रकार लक्ष्यते देख सकते हैं लोकः लोक लोकान् समस्त लोकों में पर्यटत विचरण करते अपि यद्यपि यान जिसको यथा जिस तरह सर्वदृशं परमात्मा सर्वे सबों में आत्मानं प्रत्येक प्राणी के भीतर ये जो अस्य इस जगत के हे तब कारण अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा पृथ्वी महाराज ने आगे कहा यद्यपि आप समस्त को में
क्लियर नहीं आ रहा अभी माइक लो
हरे कृष्णा हो गया ठीक हो गया पृथ्वी महाराज ने आगे कहा यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं किंतु लोग आपको नहीं जान पाते जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है मुह्यन्ति असुरयः कभी कभी ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र जैसे देवता भी श्री भगवान को समझ नहीं पाते। जब श्री कृष्ण इस लोक में थे तो ब्रह्मा तथा इंद्र ने भी उन्हें गलत समझा, तो फिर योगियों या ज्ञानियों का क्या कहना जो श्री भगवान को निर्गुण मानते हैं। इसी प्रकार चारों कुमार जैसे महापुरुष तथा वैष्णव भी सामान्य पुरुषों से अदृश्य रहते हैं, यद्यपि वे विभिन्न लोकों में सदैव विचरण करते रहते हैं। जब सनातन गोस्वामी श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु गए तो चंद्रशेखर आचार्य उन्हें नहीं पहचान पाए। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि श्री भगवान प्रत्येक हृदय में स्थित हैं, और वैष्णव भी जो उनके शुद्ध भक्त हैं संसार भर में भ्रमण करते रहते हैं, किंतु भौतिक संसार की माया से ग्रस्त लोग इस सृष्टि के अथवा वैष्णवों के स्रोत रूप श्री भगवान के रूप को नहीं समझ पाते। अतः यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने भौतिक नेत्रों से न तो श्री भगवान को और न ही वैष्णव को देख सकता है। उसे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके श्री भगवान की सेवा करनी होती है, तभी क्रमशः वह अनुभव करता है कि श्री भगवान कौन है और वैष्णव कौन है।
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाक्या चक्षुरुन्मीलितानि येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदन्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण। नैव लकस्यते लोको लोकान् पर्यतोऽपि यान् यथा सर्वा दिशं सर्वा आत्मनाम येष हेतवः। तो इस श्लोक का उच्चारण प्रीतु महाराज कर रहे हैं, और पिछले अध्याय में आपने प्रीतु महाराज की शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा जो कि उन्होंने दी थी अपनी प्रजा को, और इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो किस प्रकार प्रीतु महाराज ने कुमारस का स्वागत किया। प्रीतु महाराज आदर्शनीय राजा थे, वास्तविकता में उन्हें शक्तवेश अवतार माना जाता है। भगवान के अवतारों का वर्णन है, अवतार का अर्थ क्या है, जो कि भगवान के धाम से प्रकट होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक फिल्म का पोस्टर देखा था अवतार, और तो अवतार शब्द इतना सस्ता शब्द नहीं है। अवतार का मतलब है जो कि भगवान के धाम से प्रकट होता है, और अनेक प्रकार के अवतार हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मन्वंतरा अवतार, युगावतार और शक्तवेश अवतार। शक्तेश अवतार के भी दो भाग हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट, मतलब कि या भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या किसी को ये कृपा देते हैं किसी शिक्षा या अद्भुत कार्य की स्थापना के लिए। जैसे कई बार भक्त पूछते थे प्रभुपाद से जीसस क्राइस्ट के विषय में, तो उन्होंने कहा वो शक्तवेश अवतार थे। तो प्रीतु महाराज शक्तवेश अवतार है, पर अवतार होते हुए भी उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं भगवान का अवतार हूं। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं अपने उदाहरण द्वारा हमें शिक्षा देते हैं, जैसे परम भगवान ने भी गुरु ग्रहण किया, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी गुरु ग्रहण किया। तो पृथ्वी महाराज के जो पिता थे नास्तिक बुद्धि के थे और अंत में समाज की प्रजा इतनी दुखी हो गई थी कि ब्राह्मणों को उन्हें श्राप देना पड़ा और जिसके पश्चात उनके पिता उनके पुत्र पृथ्वी महाराज का शासन आरंभ हुआ। पृथ्वी महाराज का शासन जब आरंभ हुआ उन्होंने प्रजा को स्पष्ट कहा कि तुम सबका कर्तव्य यह है कि तुम परम भगवान का गुणगान करो। पृथ्वी महाराज ने कहा कि जो राजा अपनी प्रजा को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देता केवल उनसे कर लेता है वो राजा का भविष्य क्या है? नरक में जाएगा जलने के लिए। आज के वातावरण में हमारे जो राजनीतिक नेता हैं चापलूसी करके किसी न किसी रूप से पद प्राप्त कर लेते हैं और खर लगाने में बड़े होशियार है ना, हर रूप से चारों तरफ से प्रयास करते हैं कर लगाया जाए। हाँ, टैक्स। और भागवतम की भविष्यवाणी है कि कलियुग के जो राजा हैं नेता हैं वो केवल यही सोचेंगे हम और कर कैसे लगा सकते हैं, समाज का सुधार नहीं। पर पृथ्वी महाराज के समय भी समाज में कर था, टैक्सेशन था, पर उस कर का एक पैसा भी राजा या कोई मंत्री अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं खर्चता था। सारा 100% कर खर्चा जाता था किसके लिए? समाज के सुधार के लिए। और आज क्या स्थिति है? शायद 1 पैसा खर्च होता है प्रजा के लिए, लगभग 80% जाता है नेताओं की सुरक्षा के लिए। तो पृथ्वी महाराज ने प्रजा को आदेश दिया कि तुम्हें वर्णाश्रम शिक्षा के आधार पर रहना चाहिए, समाज का विभाजन 4 वर्णों 4 आश्रमों में किया जाता है, पर चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो या चाहे आप संन्यास आश्रम में हो आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। तो पितृ महाराज की शिक्षा से प्रजा अत्यंत सुखी हो गई। जब महाराज वेना का राज्य था जब सारे सागर सूख गए थे, पेड़ों में फल नहीं था और पृथ्वी से अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था, आज क्या स्थिति है? आज हम उसी स्थिति पर पहुंच रहे हैं जो वातावरण था महाराज वेना के राज्य के समय। आज दिन ब दिन सागर सूखते जा रहे हैं। अब भारत के किसी कोने में जाओ नदियों को देखो तो आप देखोगे नदियों में जो जल है घटते जा रहा है। अब वृंदावन जाओ, यमुना का नदी के किनारे जाओ, आप देखोगे कितना लो लेवल है पानी का। तो आज आप लोग समाज में महंगाई अनुभव कर रहे हो। हाँ, तो महंगाई का एक कारण क्या है? एक कारण यह है दिन ब दिन खेती से उत्पादन कम होते जा रहा है। और कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यज्ञ नहीं करते, यज्ञ नहीं करते तो वर्षा की प्राप्ति नहीं होती और वर्षा की प्राप्ति नहीं होती तो अन्न की प्राप्ति नहीं होती, अन्न का उत्पादन कम हो जाता है। तो पृथ्वी महाराज की जो शिक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके शासन के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। जैसे आज भी प्रजा राम राज्य का स्मरण करती है ना। तो राम राज्य का स्मरण हम क्यों करते हैं? क्यों? एक कारण यह है कि राम राज्य के समय समाज की प्रजा अत्यंत सुखी थी। मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। तो पृथु महाराज आदरणीय राजा थे, उनके शासन के समय जो प्रजा थी अत्यंत सुखी थी। तो पृथु महाराज के शासन का स्मरण आज भी लोग करते हैं। ये कुमारास कौन है जिनके विषय में आप पढ़ रहे हो इस अध्याय में? ये है ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उनकी इच्छा थी कि प्रजा बढ़े, तो उन्होंने कुमारास को भी आदेश दिया था गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। अब देखते हो कि हिंदुस्तान में हर माता पिता यही चाहता है मेरा बेटा गृहस्थ बने। कोई ये नहीं कहेगा भक्ति करो, भक्ति भी करो पर गृहस्थ धर्म का पालन जरूर करो। इन्हें सिखाना पड़ता है कि पृथ्वी में गृहस्थ की कमी नहीं, असली शुद्ध भावना के भक्तों की कमी है। खैर, कुमारराज की इच्छा थी कि वो ब्रह्मचारी रहें, और कुमारस को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, और उन्होंने इनकार कर दिया। और उनके पास योगिक सिद्धियां थी जिनके द्वारा वो अपने शरीर को बड़े होने से रोक पाए थे। जैसे सिद्धेश्वर, उनके पास अनेक योगिक सिद्धियां थी, और इन योगिक सिद्धियों के कारण वो कहां भी पहुंच सकते थे बिना किसी हवाई जहाज के या गाड़ी के या मोटर के। आपने मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो आपको या गाड़ी पकड़नी पड़ती है या मोटर या हवाई जहाज। पर जो कुमारस थे उनके पास नारद मुनि के समान ये योग्यता थी कि वो कहां भी, और केवल एक ही लोक में नहीं, एक लोक से दूसरे लोक। आजकल अगर आप यात्रा भी करो तो आप केवल इसी प्लेनेट के अंदर इसी लोक में यात्रा कर सकते हैं, है कि नहीं? पर प्राचीन समय में नारद मुनि कुमारस वो एक लोक से दूसरे लोक पहुंच सकते थे अपने योगिक सिद्धियों के द्वारा, इसलिए उन्हें सिद्धेश्वर कहा जाता है। तो कुमारस जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिव जी के बड़े भाई। तो कुमारस पहुंचे पृथ्वीराज के आश्रम में। पृथ्वीराज यज्ञ कर रहे थे और पृथ्वीराज ने जब कुमारस को देखा तो बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए। ये है एक उदाहरण किस प्रकार हमें संतों का स्वागत करना चाहिए। और आप पढ़ते हो भागवतम में जब सुदामा ब्राह्मण भगवान कृष्ण के घर में पहुंचा, भगवान ने क्या उस ब्राह्मण को ऊपर बिठाया और उसके चरण धोए, है कि नहीं? तो उसी प्रकार पृथु महाराज ने कुमारस का स्वागत किया, उनके चरण धोए और ये कहा मेरा क्या सौभाग्य है कि परम भगवान ने ऐसे महान पुरुषों को भेजा है मेरे घर में वातावरण को पवित्र बनाने के लिए। आपने आपको बड़ा भाग्यवान समझा। जैसे जब भारी महाराज यज्ञ कर रहे थे और वामन देव जी उस यज्ञशाला में पहुंचे तो बाली महाराज भी बड़े भाग्यवान मान रहे थे अपने आप को। तो पृथु महाराज इन श्लोकों में कुमारस का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें आदर दे रहे हैं और कहते हैं हालांकि आप अलग अलग लोकों की यात्रा करते हो। प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी थी 1952 में, जिसको प्रकाशित किया था ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स के नाम पर 1952 में सबसे पहली बार रशिया ने एक साइंटिस्ट को भेजा था, एस्ट्रोनॉट को भेजा था आउटर स्पेस में, और प्रभुपाद जी ने देखा कि आजकल हमारे वैज्ञानिकों की यह भावना है हम दूसरे लोगों की यात्रा करें। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा ही इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अनेक लोगों की सुगम यात्रा है ना, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो इच्छा है आज के विज्ञानियों की दूसरे लोगों की यात्रा करने के लिए, ये कोई नई इच्छा नहीं है, ये तो बड़ी प्राचीन इच्छा है। पर अगर आप दूसरे लोगों की यात्रा करना चाहते हो तो आपको आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करना पड़ेगा। ये नहीं सोचिए कि आप पैसे खर्च कर आप कोई ऐसी योजना बना लोगे कि आप दूसरे लोगों की यात्रा कर सकोगे। जैसे कि रावण की इच्छा थी कि स्वर्ग तक सीढ़ी द्वारा वो पहुंचे, है ना। आप अगर दूसरे लोगों में जाना है तो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कीजिए जिसके द्वारा ये योग्यता आप प्राप्त कर सकोगे। तो यहां पृथ्वीराज कह रहे हैं हालांकि आप जो कुमारज हैं अलग अलग लोगों में यात्रा करते हो, हर स्थान में आपको नहीं समझ सकते या आपको नहीं पहचान सकते। जैसे कि परम भगवान को हर व्यक्ति समझ नहीं पाता, और इतना तक कि ब्रह्मा जी और इंद्र जी इस श्लोक में खास करके ब्रह्मा जी और इंद्र जी का वर्णन किया है और के कहा है कि वो भी परम भगवान को नहीं समझ सकते। तो परम भगवान हम सबके हृदय में है, ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय से रजना तिष्ठति। पर हम परम भगवान को अगर समझना चाहें तो किस चीज की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी और इंद्र जी और देवता वो भी कई बार भ्रम में आ जाते हैं। जैसे कि जब इंद्र जी को सूचना मिली कि इस बालक ने सालाना इंद्र यज्ञ को रुकवा दिया है, नंद महाराज किसान थे, इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था किसान की सफलता निर्भर है फसल पर, और फसल की सफलता निर्भर है किस पर, वर्षा पर, और वर्षा नहीं होगी तो आप क्या कर लोगे, आप अच्छे से अच्छा केमिकल ले आओ, फर्टिलाइजर ले आओ, पर बारिश नहीं पानी नहीं मिलेगा तो फसल कहां से होगी। तो भगवान ने कहा कि पिता क्या कर रहे हो। पिता ने सोचा कि ये छोटा बालक है 5 साल का क्या समझेगा, कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर बेटे ने फिर से कहा मित्रों से कुछ छुपाया थोड़ी जाता है, बताइए आप क्या कर रहे हो। फिर पिता ने कहा कि हम किसान हैं इसलिए इंद्र की प्रशंसा के लिए इस यज्ञ की योजना कर रहे हैं। खैर भगवान के कहने पर भगवान ने कहा क्या आवश्यकता है इसकी, वर्षा तो प्राप्त होगी, यज्ञ की क्या जरूरत है। खैर भगवान के कहने पर नंद महाराज और ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ को नहीं किया, जिसके कारण इंद्र इतने क्रोधित हुए, उन्होंने समवर्ता का बादल को छोड़ा। समवर्ता का बादल जो है बड़ी तेज बिजली और बूम आवाज करते करते आता है, इतनी तेज आवाज की अब सुनते ही घबरा जाओगे, और तेजी के साथ वर्षा बरस रही थी। हर पानी का बूंद एक खंभे जितना भारी था, अंदाजा लगाओ। और इंद्र का भाव था मैंने इन ब्रिजवासियों को सबक सिखाना है। उन्होंने इंद्र यज्ञ बंद कर दिया, मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैंने सबको डुबो देना है। और जब ब्रिजवासियों ने देखा ये कठिन परिस्थिति, तो भक्त के लिए सुख दुख में एक ही चारा रहता है, वो क्या है? भगवान के शरणागत होना। ब्रिजवासियों ने भगवान के चेहरे को देखा, भगवान समझ गए, कहा बचाओ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया बाएं हाथ के एक छोटी उंगली के नाखून के पल पर, और एक हफ्ते के लिए जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर, सारे ब्रिजवासी भगवान के चेहरे को घूर कर देख रहे थे। और इतने साथ एक हफ्ते के लिए ना उन्होंने कुछ खाया या पिया, ना ही उन्हें कुछ भूख लगी, क्योंकि भगवान के चेहरे देखते हुए इतना अधिक आनंद अनुभव कर रहे थे कि ना भूख लगी ना प्यास लगी। तो फिर इंद्र समझ पाए कि मेरी भूल थी, कि मैंने सोचा कि ये बालक कोई साधारण बालक है। तो दूसरे शब्दों में कई बार देवता भी समझ नहीं पाते कि परम भगवान का असली स्वरूप। इसी प्रकार इस श्लोक में ब्रह्मा जी का भी वर्णन है। भगवान गए थे अपने साथियों के साथ पिकनिक में, जैसे आप लोग पिकनिक में जाते हो नेशनल पार्क या, तो भगवान भी कई बार अपने मित्रों के साथ जाते हैं पिकनिक में। ग्वाले ऊपर भगवान और उनके ग्वाले जब जाते हैं, अकेले नहीं जाते, किसको लेके जाते हैं साथ? बछड़ों को, गायों को। आज के जमाने में लोग घूमने जाते हैं कुत्ते बिल्लियों के साथ, लोग कुत्तों को लेकर घूमने जाते हैं, और अक्सर कुत्ते जो है खींचते हैं उनके स्वामी को। खैर भगवान गए थे अपने मित्रों के साथ, ग्वालों के साथ, बछड़ों के साथ, और अस्तिवर सब भगवान बीच में थे। बछड़े घास खा रहे थे, आस्ते आस्ते नजरों से दूर हो गए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें हर लिया, किडनैप कर लिया। और ब्रह्मा जी ने उन्हें क्लोरोफॉर्म दे दिया, जैसे आप ऑपरेशन के लिए जाओ तो आपको क्लोरोफॉर्म देते हैं ना, लंबा क्लोरोफॉर्म दिया। आपको तो क्लोरोफॉर्म दिया जाता है 4-5 घंटों के लिए, उनको ऐसा क्लोरोफॉर्म दिया वो बिल्कुल सो गए एक साथ के लिए। तो खैर भगवान ने देखा कि ये तो बड़ी कठिन परिस्थिति है। पहले ब्रह्मा जी ने ग्वालों को किडनैप किया, फिर जब ग्वाले उन्हें ढूंढने गए उनको भी उठा लिया। तो भगवान ने देखा, भगवान तो समझ गए थे ये ब्रह्मा जी की शरारत है। तो भगवान ने क्या किया? अपना विस्तार किया, अनेक ग्वालों के रूप में और बछड़ों के रूप में, और यही ग्वाले और बछड़े वापस घर में लौटे, और माताओं का प्रेम अपने पुत्रों के लिए और भी अधिक बढ़ गया, गायों का प्रेम अपने बछड़ों के लिए और भी अधिक बढ़ गया। इस कथा के पीछे एक और भाव है, क्योंकि जब गोपियां देख रही थी यशोदा माता को अपने पुत्र, प्रिय पुत्र की देखभाल करते हुए, तो सबके मन में यह भावना प्रकट हुई थी कि हमें भी ऐसा मौका मिले कि हमें भी कृष्णा जैसे पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने ये इच्छा पूरी कर दी, विस्तार किया, और भगवान इन सब घरों में उपस्थित थे पुत्र के रूप में, और माताओं को पता भी नहीं लगा कि ये बेटा जो है डुप्लीकेट है उनको बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये डुप्लीकेट है या ये बछड़े, और गायों को पता नहीं लगा ये हमारे ये बछड़े भी डुप्लीकेट है। तो इस प्रकार से एक साल हो गया लगभग, और ना माताओं को पता लगा ना बछड़ों को ना गायों को। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा इन बछड़ों को और ग्वालों को उसी स्थान में, तो वो सोचने लगे ये जाग तो नहीं गई जिनको मैंने सुलाया था, तो गए देखने के लिए कि जिनको मैंने सुलाया था वो वहां सो रहे हैं या जाग गए, और जाग गए तो कैसे जाग गए। थोड़े से जाकर देखा सब आके वहां सो रहे थे, तो समझ गए क्या कि कृष्ण भगवान ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की है, अपना विस्तार किया है, और उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों के द्वारा परम भगवान का गुणगान किया। तो आप भागवतम में पढ़ते हो सुंदर स्तुतियों के द्वारा भगवान के अनेक भक्त परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आप पढ़ोगे दसवें स्कंद में सुंदर स्तुतियों के द्वारा इंद्र जी भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और आप रोज ब्रह्म संहिता के उच्चारण के द्वारा भगवान का स्वागत करते हो, गोविंद मादि पुरुषम तमाम हम जामे। तो प्रीतु महाराज कह रहे हैं आज के श्लोक में कुमारराज के विषय में कि आप अनेक लोगों की यात्रा करते हो पर लोग आपको नहीं पहचान पाते, जिस प्रकार लोग परम भगवान को भी नहीं पहचान पाते जो कि उपस्थित हैं हरि के हृदय में। परम भगवान हरि के हृदय में उपस्थित हैं, और इस श्लोक में कहा जाता है कि परम भगवान हर के हर कार्य के साक्षी बनते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें हर कार्य के साक्षी कौन है, परम भगवान वो है साक्षी। कई बार भौतिकवादी व्यक्ति ये समझ नहीं पाते, वो कहते हैं आप कहते हो आत्मा सनातन है, उसका देहांतर हो रहा है, पर हमारे सब कार्यों के साक्षी कौन है। साधारण स्थिति में अगर साक्षी नहीं हो तो आपने अगर खून भी किया है किसी का बच जाते हो, am I right? You're a half lawyer. इसके लिए जो बड़े एक्सपर्ट खिलाड़ी होते हैं वो कोई साक्षी को छोड़ते ही नहीं। तो आजकल कलियुग का रिवाज नियम इतना भयंकर है, आप गलत काम कर लो जब तक साक्षी नहीं है आपको कोई सजा ही नहीं मिलती। तो कई बार लोग पूछते हैं हमारे हर कार्य का साक्षी कौन है, तो यहां कहा गया है कि परम भगवान साक्षी है। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में परम भगवान हमारे हर कार्य के साक्षी बनते हैं। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपहानम चा, मेरे कारण ही यादाश आती है और अपहानम या भूलने की शक्ति। तो भगवान हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। अगर आप सोचते हो हमने तो ये चापलूसी कर ली, हमने तो ये गड़बड़ कर लिया पर किसी ने देखा नहीं तो हम बच गए, आप भूल रहे हो भगवान हर चीज के साक्षी हैं। और जब भगवान देखते हैं ये व्यक्ति सचमुच मेरे शरणागत होना चाहता है तो भगवान उसे ये साधन देते हैं, और जब भगवान देखते हैं ये व्यक्ति मेरी सेवा करना चाहता है, जैसे एक ग्रंथों के वितरण का मैराथन चल रहा है और 4 दिन बच गए हैं समाप्त नहीं हुआ, तो भगवान देखते हैं इस भक्त में श्रद्धा है मेरी शिक्षा का वितरण करने के लिए, तो भगवान फिर उसे सुविधा देते हैं कि जिसके द्वारा वो ये सेवा का पालन कर सके। और भगवान कैसे पहचान देते हैं, क्योंकि वो हरे के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और क्योंकि परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, वो समझ जाते हैं हर भक्त की क्या इच्छा है। तो हमें किसी स्थिति में ये नहीं सोचना चाहिए कि आप भगवान से दूर हो, भगवान आपके हृदय में उपस्थित है परमात्मा के रूप में। और प्रभुपाद जी कहते थे हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप गुरु से दूर हो, और अगर आप गुरु के संदेश का पालन कर रहे हो तो आप हमेशा ये महसूस करोगे कि गुरु आपके साथ है। जैसे प्रभुपाद जी ने अनेक समय कहा, आई नेवर थॉट आई वॉज अवे फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर, मैंने कभी नहीं सोचा मेरा गुरु मेरे से दूर है। तो भगवान हरि के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। आगे इस श्लोक में के तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चंद्रशेखर आचार्य का और सनातन गोस्वामी का। तो सनातन गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी बड़ी कठिनाई के साथ। पहले उनके भाई रूपक गोस्वामी, रूपक और सनातन विश्व के सबसे धनी राज्य का शासन कर रहे थे आज से 500 साल पूर्व, और इनकी राजधानी राजा था एक मुसलमान अधिकारी जिसका नाम था नवाब हुसैन शाह। रूपक गोस्वामी ने पहले अपनी नौकरी त्यागी, फिर सनातन ने एक महीने के लिए घर में बैठे और सारा दिन सनातन गोस्वामी घर बैठकर एक महीने के लिए ब्राह्मणों के साथ भागवत का अध्ययन कर रहे थे। तो राजा को शक हुआ क्या समस्या है, पहले तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहता था, अब इतना बीमार क्यों है। तो राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा सनातन गोस्वामी का स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए। आजकल तो अगर कोई आपके घर में आना चाहे तो उसे घंटी बजाना पड़ता है, अगर आप नहीं चाहते तो आप जवाब नहीं देते। पर प्राचीन समय में सुविधा नहीं थी, तो ये डॉक्टर सीधा अंदर आ गया सनातन गोस्वामी के घर में, और कमरे में आकर देखा सनातन ठीक है, भागवतता का अध्ययन कर रहे हैं ब्राह्मणों के साथ। जब राजा को यह सूचना दी गई कि सनातन बीमार नहीं है बिल्कुल ठीक है, राजा ने सनातन को निमंत्रण दिया और कहा तुम भी अपने भाई जैसे निकम्मे बन रहे हो। तुम्हारा भाई तो निकम्मा निकला, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब तुम भी छोड़ना चाहते हो, क्योंकि राजा निर्भर था इनके शासन के ऊपर। तो सनातन गोस्वामी को राजा ने जब सुना कि सनातन ने कहा मेरी अब कोई रुचि नहीं है इस कार्य में, तो राजा ने सनातन को जेल में भिजवा दिया। जेल में सनातन को भेजा, उसी समय सनातन को एक पत्र आया था अपने भाई रूपक गोस्वामी से, जिसमें रूपक गोस्वामी ने कहा मैंने थोड़ा धन तुम्हारी सुरक्षा के लिए उस स्थान में छोड़ा है। जब रूपक गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी, उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि एक पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ, और उन्होंने 50% बांटा ब्राह्मणों को, 25% बांटा रिश्तेदारों को, और 25% उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। तो सनातन गोस्वामी बड़ी कठिनाई से निकले जेल से. पहले उन्होंने एक रकम दी उस जेलकीपर को, कहा कि मैं मक्का जाना चाहता हूं. उन दिनों में मुसलमानों का शासन था. और उस जेलकीपर को क्या बोलते हैं हिंदी में? जेलर. अच्छा, जेलर तो अंग्रेजी शब्द है. तो क्या वो जेलर ने कहा, अरे भाई तुमको छोड़ूंगा तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा. फिर सनातन ने बढ़ा दिया थोड़ी ज्यादा बख्शीश. फिर सनातन निकले और उनके साथ एक नौकर था ईशान. रास्ते में वो छुप छुप कर सनातन की यात्रा, उद्देश्य था बनारस में पहुंचने के लिए, जहां चैतन्य महाप्रभु जी चंद्रशेखर आचार्य के घर में निवास कर रहे थे. तो रास्ते में वो रुके एक रात के लिए. दिन को यात्रा करते थे, रात को विश्राम करते थे. और वो जो जेल का मालिक थे, वो जो होटल में रुके रात को, वहां स्वागत के स्थान में, जैसे हमारे यहां रिसेप्शन डेस्क है, उस व्यक्ति ने एक जोशी को रखा था. और वो जोशी एक पहचान लेता था ये यात्री धनी है या गरीब. वो धनी है तो रात को चोरी करते थे. तो इस जोशी ने वो होटल के मालिक को सूचना दी, अरे ये तो बड़ा धनी आदमी यात्री है. तो उसकी खास खातर करने लगा. जब कोई व्यक्ति आपकी खास खातर करे तो आप घबरा जाते हो, आपको पता रहता है कुछ ना कुछ ये मांगेगा. तो सनातन को शक हो गया कि ये होटल का मालिक मेरी इतनी देखभाल कर रहा है, इतना आदर दे रहा है, जरूर कुछ चाहिए उसे मेरे से. तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा, तुम धन तो नहीं उठा रहे अपने साथ? तो नौकर ने हिचकते हुए कहा, मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं, थे 8. तो सनातन ने कहा, तुम मौत को 7 क्यों उठा रहे हो? उस सनातन ने वो 7 सोने के सिक्के लेकर होटल के मालिक को दे दिया. होटल का मालिक शर्मिंदा हो गया, कहने लगा, मैं आज रात को तुम्हारा कत्ल करने लगा था ये धन लेने के लिए, अब तुमने खुद ही आकर दे दिया, मुझे नहीं चाहिए. सनातन ने कहा, आप नहीं लोगे तो कोई और रास्ते में मेरा कत्ल करेगा ये लेने के लिए, इससे अच्छा आप भी ले लो. तो और सनातन ने फिर अपने नौकर को वापस घर भेज दिया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था. तो सनातन पहुंचे बनारस में. उस समय चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में निवास कर रहे थे. और चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो समझ गए कि सनातन आ गया है मुझे मिलने. तो उन्होंने चंद्रशेखर को कहा, देखो बाहर कोई संत आया होगा. चंद्रशेखर बाहर आए, देखा केवल एक दाढ़ी वाला व्यक्ति देखा, क्योंकि सनातन छुप छुप कर आ रहे थे महाप्रभु जी का दर्शन लेने, तो दाढ़ी उग गई थी. तो उस चंद्रशेखर ने सोचा, ये तो कोई मौला है. तो उन्होंने लौट कर महाप्रभु को कहा, नहीं मुझे तो कोई संत ही नजर आता. फिर से भेजा, फिर लौट और कहा, मुझे तो कोई संत नजर नहीं आता. फिर चला उसने, फिर चंद्रशेखर ने कहा, एक मौला है वहां दाढ़ी वाला. फिर सनातन महाप्रभु ने कहा, वो मौला नहीं, शुद्ध भक्त है. फिर उसे अंदर लेके आए और महाप्रभु उसे गले मिले. तो सनातन को स्वामी को चंद्रशेखर पहले पहचान नहीं पाए. तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्थापित कर रहे हैं कि परम भगवान को समझने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी श्लोक की समाप्ति में कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को शुद्ध बनाना है और उन्हें भगवान की सेवा में जोड़ना है, फिर व्यक्ति समझ पाएगा वैष्णव कौन है और परम भगवान कौन है। तो ये जो भक्ति योग का जो ज्ञान दिया जा रहा है आपको, ये जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, उदाहरण के लिए जप करो, शास्त्र पढ़ो, सेवा करो, इसका मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव है आपके अशुद्ध मन और इंद्रियों को शुद्ध बनाना। और जब अशुद्ध मन और इंद्रियां शुद्ध बनेंगी, जब ही आप समझ पाओगे परम भगवान को और उनके भक्तों को। और अगर आप सोचते हो कि पवित्रता का बिना ये संभव है, तो ये बहुत भारी भूल है। तो इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो कि इस प्रकार प्रीतु महाराज ने कुमार राज का स्वागत किया। और कुमार राज, जैसे हम कह चुके हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। आप पूछ सकते हो क्या कारण है उन्हें पिता का आदेश का पालन नहीं किया। आप देखते हो भागवत में कि बाली महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने भी उन्हें कहा था, ये जो तुमने वचन दिया है वामन देव को, उस भिखारी को, ब्राह्मण को, उसका पालन मत करो, तुम जानते नहीं ये कौन है, ये तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प लेगा। पर भाली महाराज ने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, कुमार राज ने पिता के आदेश का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि परम भगवान के शरणगत रहना। उनकी इच्छा थी कि वो ब्रह्मचारी जीवन बिताएं जिंदगी भर और भगवान की सेवा करें। तो हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्थ, संन्यास। और ब्रह्मचारी आश्रम के आश्रम में कई नियम है, जैसे कि स्त्रियों से आवश्यकता से अधिक चर्चा नहीं करना, स्त्रियों का सोचना नहीं, और कई उपदेश है जिनके विषय में आप भागवतम के छठे स्कंध में पढ़ते हो और सातवें स्कंध में। तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए शुद्ध ब्रह्मचारी रहने के लिए। और इस ब्रह्मचारी आश्रम में केवल एक ही भाव रहता है कि हम सदा भगवान की सेवा में जुड़े रहे। तो कुमार राज ने की इच्छा थी कि वो नैस्थ का ब्रह्मचारी के रूप में रहे जिंदगी भर। और आप देखते हो कि प्रीतु महाराज भी कितने उत्साहित थे भगवान के संतों का स्वागत करने के लिए। आज के वातावरण में कोई राजनीतिक नेता में ये इच्छा नहीं रहती। तो हमें भक्ति योग के पालन से शुद्ध मन, बुद्धि, इंद्रियों को शुद्ध बनाना है। और भक्ति योग आरंभ होता है महामंत्र के उच्चारण के माध्यम से। तो महामंत्र का जाप करना चाहिए। और जैसे शास्त्र में कहा गया है, जितना ध्यान पूर्वक जाप करोगे उतनी तेजी के साथ आपका आध्यात्मिक परिवर्तन होगा। जप का लाभ तो हर स्थिति में है, पर अगर आप इस जप का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और ध्यान पूर्वक का अर्थ है जब जप कर रहे हो तो जप ही अपना मूल सेवा मानो। और क्योंकि जप में भगवान के नामों में, भगवान में कोई अंतर नहीं। और जितने ध्यान से करोगे उतना ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और भक्ति योग एक माध्यम है, भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अशुद्ध मन और इंद्रियों को शुद्ध बना सकते हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूछिए कोई प्रश्न है। तो आप ऐसे कितने भक्तों ने ग्रंथों के मैराथन में की सेवा में सहयोग दिया? तो मैराथन खत्म हो गया कि है अभी भी? कब तक चलेगा? हाँ, असल में चार दिन तो चलेगा, पर हमारा भाव होना चाहिए, हर दिन मैराथन है ना, हमारा भाव होना चाहिए कि हर दिन हमने भगवान का संदेश आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। आप ये तो नहीं सोचते साल में एक महीना हम प्रसाद खाएंगे,